वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भले चंगे हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इन दिनों हम भजन संहिता की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर अपने दूसरे आगमन के विषय में प्रभु यीशु के लिए कहता है। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पवित्र आत्मा पर कैमरा। अब स्वर्ग का कैमरा बंद हो जाता है और पृथ्वी का कैमरा चालू होता है। अब पवित्र आत्मा कहता है, भजन संहिता 2 उसके 10 और 11 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पिछले कुछ वर्षों के मेरे बाइबल अध्ययन में सबसे अधिक विस्मयकारी बात जो मैंने देखी वह है, इस संसार के इतिहास में परमेश्वर ने शासकों को सदैव संदेश दिया है, इसमें कोई भी छूटा नहीं है। प्राचीन काल में मिस्र के राजा के बंदी गृह में एक युवक यूसुफ था। परमेश्वर ने उसे बंदी गृह में इसलिए रखा था कि समय आने पर उसे बाहर निकालकर वहां का उपासक बनाए। यह इतिहास के निर्णायक समयों में से एक था। परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। जब बेबीलोन अर्थात बाबुल के राज्य का उदय हुआ और वे चरम सीमा पर पहुंचे, तब परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर के साथ दानियल को रखा। वह उसका प्रधानमंत्री ही नहीं बना, उसने राजा को परमेश्वर के मोक्षक या मुक्तिदाता का ज्ञान का बोध करवाया। परमेश्वर ने दानियल को वहीं रखा जब तक कि फारस का राजा कुसरो वहां न आया। कुसरो ने जीवित परमेश्वर यहोवा के नाम में राजाज्ञा भी निकाली। नेपोलियन कहता था कि उसने अपनी किस्मत खुद लिखी है, परंतु उस पर प्रकट किया गया कि उसे परमेश्वर ने उठाया है। यह एक अति ध्यान देने योग्य बात है कि परमेश्वर ने सदा ही संसार के शासकों और प्रतिष्ठित जनों को अपना वचन सुनाया है। यहाँ पवित्र आत्मा शासकों से कहता है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। वह यह भी कहता है भजन संहिता 2 उसके 12 में, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है, धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। बाइबल अध्ययन में हमारे एक अध्यापक कहा करते थे, पुराने नियम में पुत्र को चूमो कहना वही बात है जो नए नियम में प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 31 पद में लिखी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पुत्र को चूमो, आपको स्मरण है कि उसे किसने चूमा था? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि यहूदा ने जब यीशु को चूमा तब उसने यहूदा से क्या कहा था? आज के बाइबल विद्वान नियत चयन, पूर्व निर्धारण और पूर्व ज्ञान की चर्चा करते हैं, और यहूदा ने जो किया वह उसकी सहज वृत्ति से हुआ, क्योंकि यह एक भविष्यवाणी थी। मैं इस समस्या का समाधान बाइबल के विद्वानों के हाथ में छोड़ देता हूँ। मैं तो एक साधारण सा प्रचारक हूँ, परंतु इन विद्वानों की बातें सुनने के बाद मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने समाधान नहीं खोजा है। ध्यान दीजिए, बाइबल क्या कहती है, जो विद्वानों की अपेक्षा सुनना उत्तम है। जब यहूदा ने यीशु के पकड़ने वालों से कहा कि जिसे वह चूमे वही यीशु है, जब उसने यीशु को चूमा तब यीशु ने क्या कहा था? मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 50 पद में, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वह नहीं जानता था कि यहूदा उसे पकड़वाने आया है? निश्चय ही वह जानता था तब उसने उसे मित्र क्यों कहा, उसका कहने का अर्थ क्या था। मैं अपना विचार सुनाता हूँ। यहूदा, तूने मुझे चूमकर भविष्यवाणी पूरी की है और भावी बाइबल विद्वानों को संतुष्ट किया है, तथापि तुझे पूरी स्वतंत्रता है कि मन फिराकर मुझे ग्रहण कर ले। इस विश्वासघात के चुंबन को स्वीकृति का चुंबन बना दे। यहूदा, तुझे यह करने की स्वतंत्रता है। तू एक स्वतंत्र नैतिक प्राणी है। पवित्र आत्मा कहता है, पुत्र को चूमो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। मेरे मित्रों, आज संसार में परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों से कहता है, पुत्र को चूमो इससे पूर्व कि देरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर इससे पूर्व कि देरी न हो जाए। वह एक दिन आएगा और इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। वह राज करेगा और सब विद्रोह का दमन करेगा। वह इस छोटी पृथ्वी पर शांति और मेल लाएगा। मैं अपनी सेवकाई में नया नया एक स्थान पर गया हुआ था। वहां के कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि मानो वे मुझ पर आभार प्रकट कर रहे हों। हम शहर में होने वाले संगीत कार्यक्रम में आपको ले जाना चाहते हैं। हमने टिकट भी ले लिए हैं। मुझे संगीत अति मनभावन लगता है, परंतु उस विषय में न तो कुछ जानता हूँ और न ही मुझे गाना आता है। मैं कलीसिया में भी चुप रहकर थोड़ी संगीत में सहायता देता हूँ। मैं संगीत की शाम से अधिक उबाने वाली बात और कोई नहीं सोच पा रहा था, परंतु मुझे उनके साथ जाना पड़ा क्योंकि वे मुझसे विनती कर रहे थे और मैं भी विनीत ही रहना चाहता था। मैं चुप रहकर उनके साथ चला गया। मैं ऐसे स्थान पर पहले कभी भी नहीं गया था। मैं अति प्रभावित हुआ। हमने प्रवेश किया और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। कुछ ही देर में वहां संगीतकार मंच में प्रकट हुए। वे पूरी बांह की कमीजें पहने हुए थे और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वाद्य को सुर साधने लगा। वहां एक प्रकार का कोलाहल मच गया क्योंकि सुर संगम किसी में नहीं था। अतः वे सब वहां से चले गए। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि हाल की बत्तियां बुझ गई और मंच की बत्तियां जल उठी। संगीतकार प्रकट हुए। इस बार वे सब कोट पहने हुए थे। वे बहुत आकर्षक भी लग रहे थे। सबने अपना अपना वाद्य संभाला। वहां सन्नाटा छा गया और निर्देशक आया। उसके आते ही तालियों की गूंज व्याप्त हो गई। उसने आभार व्यक्ति से सिर झुकाया और अपनी लकड़ी उठाई। उसने एक बार फिर श्रोतागण का अभिवादन किया और पीछे मुड़ गया। उसने वह लकड़ी उठाई। वहां सन्नाटा था। उसने ज्यों ही वह लकड़ी नीचे की, मेरे मित्रों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने जीवन में ऐसा संगीत कभी नहीं सुना था। ओह, कैसा स्वर संगम, कैसी अद्भुत उपज थी। आज इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपनी ही राग अलाप रहा है। प्रत्येक दल अपनी ही बात सुनाना चाहता है। सब अपनी अपनी अलाप रहे हैं। संगीत नाम की बात ही नहीं है। सब कुछ बेसुरा है। परंतु एक दिन ज्योति जलेगी और मसीह आएगा। इस पृथ्वी पर आकर वह अपना राजदंड उठाएगा और जो कुछ उससे असंगत है वह हटाया जाएगा। और जब वह राजदंड को नीचे करेगा तब संसार सुरों से भर जाएगा। मैं कृतज्ञ हूं कि मैं उस संसार में वास करता हूं जहां मैं उसे दंडवत कर सकता हूं और अपनी देह और अपने जीवन को उसके साथ सुसंगत बना सकता हूं। मैं उसे दंडवत कर सकता हूं और उसे स्वीकार कर सकता हूं, उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान सकता हूं। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 3 से इस अध्ययन को जारी रखेंगे। इसमें हम देखेंगे प्रातःकालीन प्रार्थना, इसराइल में भक्तों की परीक्षा। भजन संहिता 3-7 एक प्रकार का सेतु है जो मेरे विचार में मसीह संबंधित 2 भजनों के मध्य मार्ग तैयार करता है। भजन 2 परमेश्वर के अभिषिक्त का परित्याग है और भजन 8 में उसकी मानव रूप में अति विजय है। इन दोनों भजनों के मध्य में भजन एक प्रकार से गोंद है जो इन्हें परस्पर जोड़ते हैं। वे मूल रूप से पृथ्वी पर मसीह की अनुपस्थिति के समय, विशेष करके मसीह के शब्दों में महाक्लेश के समय इसराइल के भक्त जनों की स्थिति का वर्णन करता है। इन 5 भजनों में हमें इसराइल की परीक्षाओं, दुख, अव्यवस्था, समस्याओं और पापों का वर्णन देखने को मिलता है। हम परमेश्वर में उनका विश्वास, उनके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और उद्धार के लिए उनकी प्रार्थनाएं आदि को यहाँ पर देखते हैं। मेरे प्रियो, परीक्षाएं और दुख सब परमेश्वर के भक्तों का भाग है, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो या इतिहास के किसी भी युग में वास क्यों ना करते हो। इन भजनों में व्यक्त सांत्वना परमेश्वर की सब संतानों के लिए है। इन भजनों को समझने की तीन विधियां हैं। इनकी मुख्य व्याख्या निस्संदेह दाऊद के व्यक्तिगत अनुभव से संबंधित है। इसके बाद महाक्लेश के समय भक्त इसराइल से प्रासंगिक चर्चा है। संसार के इतिहास में किसी भी समय किसी भी स्थान में उपस्थित ईश्वर भक्तों के संबंध में भी यह भजन प्रासंगिक है। इन भजनों को इस दृष्टिकोण से देखने पर यह हमारे लिए अधिक अर्थपूर्ण सिद्ध होगा। भजन तीन को कहते हैं दाऊद का भजन, जब वह अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भाग जाता था। इसका ऐतिहासिक ब्यौरा दूसरे सामुएल की पुस्तक अध्याय 15 उसके 18 पद में है। इस शीर्षक से हमें भजन के विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। यह भजन हमें बताता है कि जब दाऊद अपने पुत्र के विद्रोह के कारण यरूशलेम से बाहर हो गया, तब उसके मन की दशा क्या थी। यह भजन दाऊद के व्यक्तिगत अनुभव की गाथा है। बड़ी ही कठिन परिस्थिति में था वह, अपने ही नगर यरूशलेम से बहिष्कृत और भगोड़ा हो गया था। यरूशलेम को दाऊद नगरी भी कहा जाता था, वह अपनी ही प्रजा से बाहर निकाल दिया गया था। उसका पुत्र अबशालोम विद्रोह करके उसके विरुद्ध हो गया और उसकी जान का दुश्मन बन गया था। अबशालोम की हार्दिक इच्छा थी कि उसके पिता को जान से मार दे। दाऊद की ऐसी दर्दनाक दशा देखकर आपका हृदय उसके लिए करुणा से भर जाता है। जब दाऊद भाग रहा था, तब उसके बैरी भी उसे खड़े होकर कोस रहे थे। उसके एक शूरवीर अबिशी ने कहा, मैं इसे भाले से मार देता हूँ। दाऊद ने कहा, नहीं, भविष्यद्वक्ता नातान ने कहा था कि दाऊद को उसके पापों का दंड मिलेगा। दूसरा शामुएल की पुस्तक 12 अध्याय उसके 11 पद में दाऊद से नातान कहता है, यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दाऊद ने पाप किया था और वह बचेगा नहीं। परमेश्वर ने अनुग्रह द्वारा उसे क्षमा करके उसका पुनरुद्वार कर दिया था, परंतु दाऊद को अपने पापों का फल तो अवश्य मिलेगा। यह उसके पुत्र के द्वारा होना था। उसके शत्रु बढ़ गए थे और दूसरा शामुएल की पुस्तक 15 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है कि इस्राएली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए। अबशालोम एक रूपवान युवक था और वह एक चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने प्रजा से अनेक अच्छे कामों की झूठी प्रतिज्ञा की थी, जिनमें उसका सफल होना संभव नहीं था। अबशालोम के विद्रोह के समय अनेक जन उसके विरुद्ध हो गए थे। वह नंगे पांव रोता हुआ यरूशलेम से बाहर निकल गया। वह किंद्रोन के पार गया। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका कोई भी नहीं है। इस भूमिका के साथ आइए हम भजन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 3 उसके 1 में लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरोध उठते हैं बहुत हैं। मित्रों, दाऊद यरूशलेम से प्रस्थान करते समय मन की गहराई से कह रहा है, जिसे हम भजन 3 उसके 2 में पढ़ते हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, लोगों का कहना था कि परमेश्वर ने दाऊद को त्याग दिया है, वह उसकी कोई भी सहायता नहीं करेगा। और सच तो यह है कि परमेश्वर ने दाऊद को त्यागा नहीं था। जब कोई मुझसे कहता है कि परमेश्वर दाऊद जैसे मनुष्य को सहन करता होगा, मेरी समझ से बाहर है। तब मेरा मन कहता है कि उनसे कह दूं, यदि परमेश्वर ने दाऊद को सहन किया तो वह आपको और मुझे भी सहन करेगा। आभारी हो कि हमारे पास ऐसा परमेश्वर है। मेरे मित्रों, वह दाऊद जैसे मनुष्य को सहन करता है और हर एक पश्चातापी विश्वासी को क्षमा करता है जो उसके पास आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दाऊद को पाप का फल भोगना नहीं पड़ा था, उसने निश्चय ही पाप का फल भोगा। पद 2 के अंत में हम देखते हैं कि लिखा है सेला। इस शब्द पर बहुत विवाद हुआ है। यह शब्द भजनों में 71 बार आया है। मेरे विचार में भजनों को संगीत से संवारा गया था कि संगीत वादों के साथ भजन मंडली गाए। मुझे पूरा विश्वास है कि यरूशलेम संपूर्ण संसार में बहुत प्रसिद्ध हो गया था और मनुष्य दूर दूर से वहां आता था कि संगीत और भजन गान सुने। अतः मेरे विचार में सेला संगीत का अंतराल था। जो संगीत नहीं समझते थे उनके लिए यह ऐसा है जैसे ठहरो, देखो, सुनो। जैसा रेलवे के क्रॉसिंग पर लिखा होता है, चाहे रेलगाड़ी दूर दूर तक दिखाई न दे, इसी प्रकार इन भजनों को पढ़ते समय हमें ठहर कर देखना है और सुनना है। सेला शब्द हमें इसका स्मरण करवाता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय हमें यही करना है। सेला शब्द संभवतः इस भजन के पहले पद्यांश का अंतर प्रकट करता है। अब सुनिए दाऊद आगे क्या कहता है, भजन संहिता 3 उसके 5 और 6 पद में। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। इस भजन को प्रातःकालीन भजन भी कहते हैं। यह दिन आरंभ करने के लिए एक अति उत्तम भजन है। अपनी सब समस्याओं और परेशानियों के उपरांत भी वह परमेश्वर में विश्वास करता है, भरोसा रखता है। वह दवाई खाए बिना रात को शांति से सोता है। वह परमेश्वर में विश्वास करके उसकी प्रतिज्ञाओं को तकिया बनाकर सो जाता था। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आगे वह कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। इंग्लैंड का राजा क्रॉमवेल अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। किसी ने उसे पूछा, आपकी बहादुरी का भेद क्या है? उसने कहा, क्योंकि मैं परमेश्वर से डरता हूँ इसलिए मुझे किसी मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। मार्टिन लूथर ने भी यही मार्ग अपनाया था। यदि आज मनुष्य में परमेश्वर का भय अधिक हो तो मनुष्यों के तलवे चाटने की कमी हो जाएगी। आज मनुष्य की जीभ मनुष्य के तलवे चाटते चाटते काली पड़ गई है। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें परमेश्वर का भय नहीं है। आप में साहस उत्पन्न करने का कारण है परमेश्वर का भय मानना। यदि आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो आपको मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था। भजन संहिता 3 उसके 7 में लिखा है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। गाल पर थप्पड़ खाने से वास्तव में दर्द होता है, आप बेहोश भी हो सकते हैं। दाऊद का अनुभव ऐसा ही था। वह कहता है कि परमेश्वर ने उसके शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है, परमेश्वर ने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। वे दाऊद को अब काट नहीं पाएंगे। भजन संहिता 3 उसके 8 में लिखा है, उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। उद्धार यहोवा है या यहोवा ही से होता है, अनुवादकों द्वारा जोड़ा गया है। यह एक अति उत्तम पद है। परमेश्वर उद्धार का करता है। दाऊद उद्धार को मुद्रा के सिक्के के समान नहीं समझता था, जिसे आप जेब में रखें तो खो जाए। उसने उद्धार को कभी एक कमाए जाने वाली वस्तु के रूप में नहीं समझा। उद्धार परमेश्वर का वरदान था। उद्धार यहोवा है, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। अब फिर सेला आता है, अर्थात हमें ठहरना है, देखना है और सुनना है। दाऊद ने इस भजन में परमेश्वर के बारे में कुछ अद्भुत बातें कही हैं। उदाहरण के लिए पद 3 में वह परमेश्वर को अपनी ढाल कहता है। परमेश्वर अपनों की रक्षा ढाल बनकर करता है। इफिसियों के पत्र 6 अध्याय के 16 पद में हम विश्वासियों को विश्वास की ढाल उठाने के लिए कहा गया है। दाऊद जानता था कि ढाल क्या काम आती है और वह तो ढाल काम में भी लेता था। परमेश्वर दाऊद की महिमा भी था, अर्थात दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास करता था। आपको स्मरण होगा कि इसराइल पर परमेश्वर की महिमा का बादल छाया रहता था, जो प्रजा में परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह था। आज हम विश्वास का आचरण करते हैं और परमेश्वर की महिमा हमारे साथ है। मेरे मित्रों, वह अपनों में स्वयं को सच्चा प्रकट करता है। परमेश्वर के मस्तक का ऊंचा करने वाला था, यह कैसे होता था? परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा की थी कि उसका घर बनाएगा और उसे आशीष, महिमा और राज्य प्रदान करेगा। दाऊद ने कहा, तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मेरे मित्रों, हम हताश हो जाएंगे, परंतु वह हमें उभारेगा। यह एक अद्भुत भजन है। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजन 3 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ेंगे भजन 4 में। विषय है सांझ की प्रार्थना, मनुष्य के पुत्र की याचना और परमेश्वर के नाम में विनती करने वालों की प्रार्थना। इस छोटे या लघु भजन का विभाजन इस प्रकार है, पद 1-3, फिर पद 4-5। इस भजन की प्रस्तावना है प्रधान बजाने वाले के लिए बांसुरियों के साथ दाऊद का भजन। संभवतः यह भजन एकाकी बजाया जाता था। अनेकों का मानना है कि यह वास्तव में तार वाले वाद्य के साथ बजाया जाता था। भजन एक ऊंची पुकार से आरंभ होता है। कष्टों में परमेश्वर के जनों की शरण प्रार्थना ही है और परमेश्वर उनकी ढाल है, हम यह देख चुके हैं। तो आइए हम भजन संहिता 4 उसके 1 पद को पढ़ें। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। यहां पर कराहना तनाव व्यक्त करता है। मित्रों, जीवन में तनाव की कमी नहीं है। आज तो तनाव के कारण मनुष्य कराहता है। हमें परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन पाना है। भजन संहिता 145 के 18 पद में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। भजन संहिता 30 के 15 में फिर हम देखते हैं, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करवाएगा। यशाया 65 उसके 24 में परमेश्वर कहता है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। भजन संहिता 18 उसके 6 पद में लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। भजन 55 के 16 में वह कहता है, मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। भजन 86 उसके 7 में लिखा है, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। और अंत में भजन 91 उसके 15 पद में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। बाइबल इन अद्भुत प्रतिज्ञाओं से पूर्ण है। भजनकार भजन 4 में पुकारता है कि परमेश्वर उसके साथ हो। भजन संहिता 4 उसके 2 में लिखा है, हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यहाँ पर लिखा है झूठी युक्ति की खोज। आइए पढ़ें भजन 4 उसके 3 पद में, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। परमेश्वर कैसा महान है! परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। अब वह चेतावनी हेतु सुधार के 2 पद देता है। भजन संहिता 4 उसके 4 पद में, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। ध्यान दीजिए, श्रद्धा के भय में खड़े रहो, कांपते रहो। श्रद्धा के भय में खड़े रहो, कांपते रहो का अधिक उत्तम अनुवाद है। और पाप मत करो, आज कांपना दिखाई नहीं देता है। भजन संहिता 4 उसके 5 में लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। मेरे मित्रों, पौलुस ने इफिसुस के कलिसिया को यही लिखा था, 4 अध्याय के 26 पद में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। उसका आत्मविश्वास और आश्वासन को आप देखिए। भजन 4 उसके 6 में लिखा है, बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा, हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। लोग प्रायः कहते हैं, अब कुछ भी सही नहीं रहा, हम कैसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपना चेहरा हम पर प्रकाशमान करे। भजन 4 के 7 में लिखा है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होती थी। दाऊद भी हमारे जैसा ही था, कष्ट के समय उसका हृदय निराशा से भर गया था, अर्थात निराश हो गया। उसके चारों ओर अविश्वासी लोग थे, उसके अपने ही लोग उसका ठट्ठा करते थे और कहते थे परमेश्वर उसका साथ नहीं देगा, परंतु परमेश्वर ने उसका साथ दिया। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। दाऊद का यह अनुभव था कि परमेश्वर उसके साथ भला है, परमेश्वर हमारे साथ भी भला है। मेरे मित्रों, देखिए यह संध्याकालीन भजन कैसे अंत होता है। भजन संहिता 4 उसके 8 पद में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। मेरे मित्रों, क्या आपको रात में नींद नहीं आती है? क्या आपने कभी भजन संहिता 4 पढ़कर देखा है? यह भजन किसी नींद की गोली से अच्छा है। ओह, ये भजन आज हमारे लिए कैसे उत्तम है और परमेश्वर के लोगों के लिए आने वाले संकट के दिन कैसे अर्थपूर्ण होंगे जो हमारी सहायता करते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मेरे मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है जो भजनकार दाऊद के अनुभव से हमें मिला है। इस पर विश्वास करें, उसमें बने रहें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
जीवन मिली मसीह में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। जीवन मिली मसीह में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हा।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हम पापी थे, पापी मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। हम पापी थे, पापी मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। कैसा महान प्रेम उसने हम पर किया, हम उसको दे धन्यवाद। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। हालेलुया, हा 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 हा।